राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14 मार्च 1993 दोपहर लगभग 3 बजे भीनासर राजस्थान में हुआ। राम।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
आप लोग पूछो कोई बात करते हो कौन सी बात क्या कहे क्या सुना। आप लोगों को मन में प्रश्न उठता हो वो खास कुछ झंझट होती हो जिसका समाधान न होता हो कोई ऐसी उलझन हो तो कोई पूछो।
प्रसाद सर्व दुखान प्रसाद तो ले
राग द्वेष वियुक्त सुविषयान आत्मवशी विधे आत्मा प्रसाद निगछति और प्रसाद सर्व दुखान हानिस्योपजाते प्रसन्न तीर्थो यासु बुद्धि बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ये 4 श्लोक है तो 4 श्लोकों में 2 श्लोक 1 2 श्लोक 1 बड़ी विचित्र बात बताइए। राग द्वेष वियुक्त सुविषयान्वेषण आत्मवश विषय आत्मा ये आत्मा प्रसाद मती प्रसाद वो जाए तो विषयान पुंस संगस्तेषु जाए थे संगात संजायते कामा कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति भ्रमा स्मृति भ्रसाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्रुति 62 63 64 65 64 पहले मैंने ये बात बताई कि विषयों का चिंतन भी कर ले चिंतन ध्यान याद मात्र करने भोगों का ये संग्रह की इच्छा भोग की इच्छा 2 खास चीज है मनुष्य मात्र में। एक तो संग्रह करने की इच्छा है एक सुख भोगने की इच्छा है। तो ये तरह की जो अच्छा इच्छा है इसमें यह कहते हैं कि सुख भोग की इच्छा का सुख का चिंतन कर ले जाए तो विषयान कौन सा शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान बढ़ाई आराम ये 8 बातें हैं इनका चिंतन भी कर ले विषयों का भोगों का चिंतन कर ले तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है और आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है कामना में बाधा होने से क्रोध पैदा हो जाता है और क्रोध से सम्मोह हो जाता है और सम्मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से पतन हो जाता है। देखो साहित्य में क्रमालंकार क्रम क्रम ऐसे हो जाता है क्रमालंकार क्योंकि विषयों के ध्यान से आसक्ति होती है, उससे कामना पैदा होती है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह, स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश हो, इस क्रम से नष्ट होता है। ये बात तो ही विषयों के ध्यान करने से, और अगर इनसे बिल्कुल विपरीत बात कहते हैं, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रिय स्तर, राग द्वेष रहित होकर और अपने वशीभूत करी इंद्रियों के द्वारा विषयों का आचरण करें, वो तो चिंतन मात्र से नौबत बचती है, वो प्रणस करती है। और राग द्वेष रही होकर के विषयों का आचरण करे, उपभोग करे, और इंद्रियों भी अपने वश में हो और विधेयत्मा वश में हो, तो उससे प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रसाद ये नहीं गए वो मखाना मिल गया, बदरसा मिल गया, नहीं, चित्त प्रसन्न होता है, राग और द्वेष से चित्त कलुषित होता है, और राग द्वेष रहित होने से चित्त प्रसन्न अनुस्वच्छ निर्मल, प्रसन्नता यहाँ निर्मलता का है, स्वच्छता का है, मन रहित होकर के साफ स्वच्छ हो जाए, निर्मल न राग है, न देश है, न हर्ष है, न शोक है, शुद्ध है, स्वाभाविक, तो संसार से उपरत और परमात्मा की तरफ चलता है तो विलक्षण शांति मिलती है, बड़ा विलक्षण आनंद मिलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से प्रसादे सर्व दुखाराम हानि शोक हो जाती है, उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुखानी हानि हो जाती है, आध्यात्मिक आदिदेव आदि भौतिक और कितने तरह के दुख क्यों हो, सब दुखों की हानि हो जाती है, और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि परमात्मा में स्थित हो जाती है। तो यहाँ प्रसाद नाम किसा है, अगर ये प्रसन्न चेतस हो जासु, तो प्रसन्न चेतस आ गया, इसका नाम ही प्रसाद है। पहले प्रसाद मगत थी, प्रसाद है सर्व दुख का नाम, फिर प्रसन्न चेत हो यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठ थे, ये तीनों ही प्रसाद नाम स्वच्छता, चित्त की स्वच्छता होती है। तो ये कब होती है, राग द्वेष रहित होकर विषयों के सेवन करने से, विषयों के चिंतन मात्र से तो पतन हो जाता है, और विषयों के सेवन करने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि परिवर्तित होती है, परमात्मा में स्थित हो जाती है बुद्धि। अब स्थित प्रज्ञ की तो आज बात अभी, स्थित प्रज्ञ क्या क्या लक्षण है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, याद अंतिम दुआ आया, तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कैसे होते हैं, वो कैसे अपने आप आता है, तो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करे, कोई भी काम करे तो राग द्वेष पूर्व न करे, किसी को ग्रहण करना तो राग पूर्वक नहीं, किसी का त्याग करे तो द्वेष पूर्वक नहीं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो करना चाहिए वो करे, और शास्त्र के जगह से नहीं करना चाहिए वैसे न करे। अस्मा शास्त्र प्रमाण उनके कार्यकारी व्यवस्था, तो करना न करने की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, क्या था शास्त्र दो शास्त्र का विधान सबके कर्म करना चाहिए, तो शास्त्र है श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं जो परमात्मा तत्व की तरफ चलने वाले हैं अथवा जो प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे पुरुष कहते हैं, वे जो करते हैं ये ददाती तत्व तो वो जैसे करते हैं वैसे करो, वो जैसे कहते हैं वैसे करो, शास्त्र कहते हैं वैसे करो, राग द्वेष वो मुख्य लेकर के मत करो। देखो भाई, बातें सुनाने को तो मैं कमर कस तैयार हो जाता हूँ, आप भी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और बड़ी कृपा है जो आप ऐसे जमाने में भी गीता जी की बातें सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। परंतु भगवान कहते हैं आचरण में लाओ, कोई काम किया जाए चिंतन करने से तो हो जाए पतन, और सेवन करने से हो जाए परमात्मा की प्राप्ति। ये दोनों विषयों का तात्पर्य हुआ 42, 43, 44, 45। तो विषयों के सेवन करने से प्रसन्नता बुद्धि परमात्मा से दूर जाए, परंतु कब आप चाहे विषयों का सेवन नहीं करे परंतु राग द्वेष नहीं होना चाहिए। इंद्रिय इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर नवसमागच्छे तो इससे परिपंथी रहो। हर एक विषय में राग द्वेष होता है, अच्छा लगे वो करते हैं, बुरा लगे वो नहीं करते। अपनी कसौटी क्या है, अच्छा लगे वो करो। तो ये कसौटी तो नीचे से नीचे अब प्राणी है, तू कर कूकर ऊंच कर बड़ पशुओं में चार, इनकी भी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है तो किससे होती है कि प्रवृत्ति होती है राग पूर्वक, इसमें मेरे लाभ होगा, इसमें हमें सुख मिलेगा, सुरुपया मिल जाएगी, उसमें मान मिल जाएगी, बड़ाई मिल जाएगी। ऐसे राग पूर्वक तो प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति होती है द्वेष पूर्वक, द्वेष करने से नुकसान हो जाएगा, रुपया चला जाएगा, अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, सुविधा नहीं रहेगी, आराम नहीं रहेगा, विश्वास ही मत करो। तो ये दृष्टि तो पशुओं की भी है, हित अन हित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अन की बात जानते हैं कि भाई हितकार है या महितकारी है, ये सुखदायी है ये दुखदायी है, वे भी जानते हैं। छोटे से छोटा बालक हो उसको दवाई दी जाए अभी कड़वी लगी थूक देगा, विशेष कीमती दवाई है, बड़ी बढ़िया दवाई है, परंतु जीव गोची नहीं थूक देगा, और कुपर तैर जीव गोची ले खा लेगा। तो बुरी से बुरी वस्तु सेवन कर देता है राग के कारण से, अच्छे से अच्छी वस्तु छोड़ दे द्वेष के कारण से। तो व्यवहार जितना हमारा होता है उसमें भाइयों बहनों ये विचार करना है कि हम जो कर रहे हैं ये राग पूर्वक कर रहे हैं क्या, और त्याग कर रहे हैं तो द्वेष पूर्वक कर रहे हैं क्या। अरे हमारे मन में ठीक नहीं लगी सत्संग छोड़ देंगे, भजन ध्यान छोड़ देंगे, पास पूजन छोड़ देंगे, क्यों से तकलीफ होती है। और सुख मिलता ताशों भी खेलेंगे, सिनेमा ही देखेंगे, तरह तरह की व्यसनों में लग जाएंगे, द्यूतंत मध्यम पितंत्र वेश्या पापंत्र चौजम परवास आदि आदि व्यसन है, दुर्व्यसन गेट उसमें नशा आ जाएगा, पान पराग खाएं अच्छा रहता है, महान पतन होता है उसमें लग जाते हैं राग आसक्ति दो, ये तो हमें होना चाहिए। और आजकल तो ऐसी बात चली है कि दुनिया का हित होगा अहित इस तरफ व्याप्त नहीं है, हम ऐसी चीज निकालें जिनमें लोग आकृत हो जाए और हमारी बिक्री पैसा पैदा हो जाए, लोग खरीदे तो कौन खरीदेगी जिनकी आसक्ति हो जाए, ऐसी नशीली चीज देने कि जिसके लिए बिना उनको चैन नहीं पड़े, अरे उसमें पैसा कमाए। वो ये नहीं है कि लोगों का हित किस बात में है, लोगों का लाभ किससे होता है, लोगों की लौकिक और पारलौकिक उन्नति कैसे होती है, इस बात की तरफ ही ध्यान नहीं है। हमारे पैसे पैदा कैसे हो, हमारे सुख सुविधा कैसे मिले, तो ये दृष्टि मनुष्यों की नहीं थी। हमने एक पुस्तक में बात पढ़ी, अजब सी लगी हमारे, कोई नई बात नहीं है। उसमें लिखा कि अपने लिए जो जप तप करता है, ध्यान करता है, जप करता है, सत्संग स्वाध्याय करता है, तो वो हिरण्यकश्यप है। क्यों हिरण्यकश्यप ही करता था, मैं जीवता रहूं मरूं नहीं, अपने लिए करता था, अपने कर्म वृत्ति ये राक्षसी वृत्ति है, ये मनुष्य की वृत्ति नहीं है। हमने पढ़ी वस्तु हिरण्यक्ष है, वो हिरण्यकश्यप है, युद्धा पता बुद्ध संयम से ना करता, अपने लिए करता है, मेरे लिए क्या है इनके सुन किया, दुनिया के लिए करूं, औरों के हित के लिए करूं, अपने लिए करूं, मरूं नहीं, दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, सुबह शाम में मरूं नहीं, लकड़ से मरूं नहीं, लोह से मरूं नहीं, जीले से मरूं नहीं, सूखे से मरूं नहीं, अग्नि से मरूं नहीं, जीव जंतु से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, ब्रह्मा जी की सृष्टि से मरूं नहीं, अपने लिए तो अपने लिए जप करता है, ध्यान करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, वो हिरण्यकश्यप है। ध्यान हाँ सत्संग करता, अपने लिए करता है, वो हिरण्यकश्यप इस बात पढ़ी है, आपको बता भी सकता हूँ, पर हमने पढ़ी है, आप तो मानते ही हो, मैं दूर थोड़ी कहता हूँ, ये बात समझ में नहीं आती है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे वेदांत भी साधु भी कहते अपने लिए नहीं करते, और किसके लिए करे? अरे सर्वभूत ही तेरता बताया, ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत ही तेरता, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए काम करो, गीता कहती है ये बात। कर्मनेव अधिकार से माँ फल कदाचन, कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, आसक्ति मत रखो, कामना मत करो, स्वार्थ बुद्धि मत रखो, दूसरों के हित के लिए करो। हम सत्संग करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें सुनते करते हैं, कड़वी बात कहने लगे तो जयराम जी जन चुड़ियों में भाषो पड़िया उठ गया, सब उठ गया, वो चाहते हैं हमारे कल्याण हो जाए, कैसे हो जाएगा। इसी केस की बात है, कई वर्षों पहले की, मैंने कहा तो समाधि भी अपने लिए नहीं, ध्यान भी अपने लिए नहीं, तो पढ़ रहे साधु बोले क्या कह रहे हो, बस किस लिए किया जाए, अपने लिए किया जाए, अपने लिए करा तो अपने देहाभिमान को बढ़ाना ही है, देहाभिमान ही पुरुष गई देश होते हैं, सब अंदर फिटने होते हैं, देहाभिमान ही होते हैं, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। मानव शरीर मिला, आप खूब ध्यान देकर देखें, ये मनुष्य का निर्वाह क्या दूसरों की सहायता के बिना हो जाता है? पहले हम पैदा हुए तो माँ बाप से पैदा हुए ना, दूसरों से पैदा हुए, उसमें दूध पिया तो, अन्न खाया तो, कपड़ा पहना तो, हमने जो कुछ खेल कूद किया जा रहे तो दूसरों की दूसरों चीजें ली दूसरों से। पद्म पुराण अंक निकला ना, तो उसने मैं सेठ जी को सुनाया करता था, पद्म पुराण केवल संस्कृत में था, हिंदी नहीं थी उसकी, ठीक अमली नहीं, तो संस्कृत देकर मैं हिंदी बोलता जाता, सेठ जी कहते ये इतना ले लो, इतना छोड़ दो, इतना ले लो, छोड़ दो। तो एक प्रसंग आया कि चलते चलते कोई सरोवर देखा तो सरोवर से पानी पीना तो उसकी मिट्टी का लोन में निकाल देना। मैं से ये क्या मतलब, ये सर पानी पीना तो मिट्टी का लोन निकाल देना थोड़ी मिट्टी। तो शेठ जी ने कहा कि हमारा पानी पीने में हक क्या है, जब हमने तालाब बनाया नहीं, खोदा नहीं, किया नहीं, हमने पानी इकट्ठा किया नहीं, तो हमारी चीज न होने से हमारा हक कैसे हुआ? तो पिया है तो थोड़ी मिट्टी भी निकाल दो, इतना अपना हिस्सा भी करोगे, काम करोगे, तो गोविंदिका जी किसी गोविंदिका जी कहने से बात समझ में आई, हमारे समझ में नहीं आई। अब कह दो रात दिन काम स्वार्थ हूँ, हाय हाय खाऊ 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 खाऊ, कैसे समझे? किस रोह का पानी पी दो काम करो, किसी वृक्ष के नीचे बैठो तो वृक्ष लगाओ, गाय का दूध पियो तो गायों की सेवा करो। अब साधु भिक्षा मांगे तो भिक्षा का तैयार, उनकी सेवा करो, उसको सुख पहुंचाओ, सत्संग कराओ, रावण सुनाओ, गीता सुनाओ, कुछ कुछ वो दवा मुफ्त में क्यों खाते हो? पर हरे दिन हमारा जल्दी कल्याण ज्ञान मुफ्त में कल्याण हो, मैं कहना कुछ नहीं पड़े, बेईमानी बेईमानी छाई हुई समझे। तो अपना तो जाए कल्याण हो जाए, तो अपना हित करना हो तो अन्याक्ष हो तो हिंदु शुरू है, सबका कल्याण कैसे हो? यज्ञार्थात कर्मो नित्य को रोको यम कर्म वंदना, यज्ञार्थात कर्मो अन्यत्र, यज्ञार्थ कर्म की सिवाय अन्य जो कर्म है वंदन कार है। ये क्या लोक परंपरा ठीक बनती है, बहन माताओं को भी काम करना है जो हमारे पूर्व की माताएं करती आई है, वो एक परंपरा है बड़ी अच्छी, उसको करना चाहिए। मैंने सुना था ना, द्रौपदी ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि महाराज आप धर्म को छोड़कर एक कदम ही नहीं रखते, वे तो जंगल में बैठे तो पा रहे हो, रहने में मकान नहीं, खाने में अन्न नहीं, पैर में कपड़ा नहीं, सुविधा नहीं, थकते दुख पा रहे है, झोपड़ी बना रहे, पूछ इकट्ठा कर रहे है, द्रौपदी लकड़ियां चुगल लाती है, रसोई बनाती है, महारानी बना, राजा महाराज युधिष्ठिर महाराज के ऊपर ताज पहनने के लिए मुकुटधारी, अब जंगल भी ये दशा हो रही है, अगर आप धर्म का पालन करते हो तो धर्म का पालन करते हो, भजन ध्यान करते हो, तपस्या करते हो, अरे खाने पीने के सुख नहीं, अरे वो दूरियों दूर कोई परवाह ही नहीं करता, अपना हक है कि नहीं है इसे परवाह ही नहीं करता, वो तो बस ले रहे जितना ले रहे, बस 12 वर्ष वनवास हुआ, 1 वर्ष अज्ञातवास हुआ, तो दुर्योधन ने कहा कि 12 वर्ष फिर वनवास करो, अब भाई 13 वर्ष के बाद अपनी अपनी चीज पर ले लो। एक ब्राह्मण गए और फिर गए, स्वयं साक्षात भगवान गए, संधि का प्रस्ताव शांति दूत बन करके, अरे भाई शांति रखो, उसको कुछ दो किसी लेने की आदत है, शांति तुम जगह बैठे रहो, 12 वर्ष फिर रहो, 1 वर्ष फिर अज्ञात वर्ष, क्यों हमने तुम्हारे को पहले पैसा लिया, गाय घेरी ना गायों के रक्षा के लिए आ गए, तो हमने दोबारा महीना से पहले पहचान लिया, इस बार से 12 वर्ष पहले 12 महीना से मैं तो गुप्त रहना चाहिए था ना, उनमें गुप्त रहने का बात आप कही, हम गुप्त आप रह से ही नहीं, और बात क्या थी, सब जगह खोज कर आ गए, पांडवों का पता नहीं लगा, तो भीष्म जी महाराज की बड़ी चिंता रहती थी, और बड़े विद्वान थे, समझदार थे, और चिंता रहती थी। जब अज्ञातवास पूरा हो गया, वो सब जितने जो गुप्त तरह थे पता लगाने के लिए गए, वे सब फिर करके आ गए, वे फिर करके सब आ गए, और उनका पता लगा नहीं पांडव कहाँ आए। महाभारत में बड़ा विशेष वर्णन आता है, तो भीष्म जी ने कहा कि ये गुप्तर तुम्हारे क्या पता लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे ब्राह्मण पंडित शुद्ध निर्मल ब्राह्मण भी नहीं लगा सकते, पांडवों का पता नहीं लगा सकते, कहा कि मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, मेरे को पहचान है, तो उसने बताया कि ऐसे गायों का दूध होगा, घर के नहीं मरेंगे, बाप के माँ बाप कहना मानेंगे, घरों का आचरण करेंगे, यत्र राजा युधिष्ठिर, यत्र राजा युधिष्ठिर, ऐसे श्लोक श्लोक कर गई। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वही बात होगी, जहाँ है वहाँ है वो, ये बात बताई। तो फिर विचार किया भाई ऐसी शांति तो विराट नगर में है, तो वे सब मार गए, 12 महीना पूरे हो गए, 13 वर्ष हो गए, तो 13 वर्ष होने पर भीष्म जी महाराज ने अपने स्थान में जहाँ रहते थे वह दीपक जोर दिए, तरे दिवाली दिवाली बना दिया। तो लोगों ने कहा आप दिवाली काहे की मना रहे हो, कि हमारे 105 दीपक है, 100 दीपक तो है दशरथ के बेटा, 5 है पांडु के बेटा, 105 दीपक हमारे हैं, तो उसके भी सब जीते जागते अच्छी तरह से है, इस बार दीपावली और पूनम में है। क्यों क्या 13 वर्ष पूरे हो गए, ये 2-3 दिन पहले की बात है, तो क्या करेंगे। वो ऐसा संपन्न प्रदेश विराट नगर है, तो सुषमा था तेरिका बनावती पति, उसने पहले दिन गाया घेरी। अब वे पांडव कैसे प्रकट हो कि गायों को कोई ले जाएगा तो वो पांडव नहीं सहेगा, गायों को चोर करके हर करके जबरदस्त छीन करके गायों को ले जाएगा तो गायों का दुख वो पांडव नहीं सह सकते, आप ही पर घूमना बोलेगा। तो पहले दिन सुषमा से आया, उसके बाद दूसरे दिन पांडव ने कौरवों ने कहा अपने चलो गाय घेर गए, उनकी गोवृद्धि बहुत हो, गोधन वृद्धि हो गया, ऐसा खेती और बढ़िया होती है तो वहीं यदि सर है, भीष्म जी ने कहा, तो वे गाय घेरी। गायों घेरी तो नकुल गायों में रहता था, नकुल एक कुंती पालता, वो गाय चढ़ाया करता, उसने आकर के आशा सुषमा घेरी, तो राजा विराट और उनके कुंवर और ये सब गए उधर, तो कंक भट्ट बने हुए थे महाराज युधिष्ठिर, तो कंक भट्ट ने कहा कि बलोबर से को ले लो, कैसे वहां युद्ध है वहां, तो अच्छा अपने ले लो, अच्छा ले लो भाई, कंक भट्ट कहते हैं समर्थिमान तो ब्राह्मण है, अच्छा है, कहता है ठीक है, ले लिया साथ में। वहां युद्ध हुआ, उस युद्ध में महाराज भीमसेन ले गदार चला जाओ, सबको मार गिरा करके सुषमा को पकड़ के ले आया, जिसने गाय घेर दी राजा था त्रिगर्त का, उसको पकड़ लाया, अब क्यों नहीं करे वो, भाई मेरे को छोड़ दो, छोड़ेगा नहीं क्या तेरे को, तो वो उसको पकड़ लिया। तो कंक भट्ट ने कहा और युधिष्ठिर महाराज कहा कि राजा ने उसको छुट्टी दे दो, आ गया गया घेरे कोई बात नहीं, छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो, चला गया। वो आए तो अभी तक पहुंचे नहीं शहर में, पहुंचे नहीं अभी तक, रात हो गई, और दूसरे दिन घेरी मर गया। दुर्योधन प्रसंगे न भीष्मो गो हरने का था, गायों के हरने के लिए भीष्म जी गए, बड़ी बड़ी बात है, दुर्योधन प्रसंगे न संग खाना कर तो कुसंग चाहत कुशल ओ ही बड़ो अवसोस, नहीं माँ घटी समुद्र की रावण बसो पड़ोस पड़ोस रावण ने समुद्र बांध दिया, बाप ने समुद्र क्या अपराध किया आपका, समुद्र बांध दिया, समुद्र को बांध दिया, इसलिए बात हुई उस से ही बात है। ये लिखा है भीष्मो गो हरण एक भीष्म जी द्रोणाचार्य कृपाचार्य बड़े बड़े निर्वात्मा गायों के लड़के ले गए, ये तो डाकुओं का काम है, चोरों का काम है, किसी में छीन लेना कहते दुर्योधन प्रसंग है ना, भीष्म को हरण था, उसने आग ग्वालियर ने कैसा गया जाने कौरव लगाया है गया जाने, तो वहां बैठा तो उत्तर कुमार महाराज विराट के उत्तर कुमारी थी कन्या और उत्तर कुंवर था, उसने करो कहूं क्या कर, मेरे सारथी कल मारा गया, ये तो आ गया राजा आया नहीं से, सारथी मेरा मारा गया सुषमा के युद्ध में, तो सारथी मेरा हुए तो मैं बताऊं क्या है ना, कौरवों ने हमारे को पांडव समझ लिया, जो को निकाल दिया जिसने हमारे पर चढ़ा कर दी, कहा ऐसे ही है, खूब जोर से बोला सारथी नहीं है, तो सैजन भी बोली कि ब्रह्मला है ना ये इंदिरा, इसको रथ हमें चलाना आता है, ब्रह्म तेरे हाथ आता है मेरे को, किसी का तो न आता है, मैंने अर्जुन का रथ आता है, अर्जुन का रथ अर्जुन भी आग दे तो बुरा कोई नहीं और दूसरे का आगते, अर्जुन का रथ आका है मैंने, इस बार मैं जानती हूँ, तो सार्थ बन जाएगा, हाँ आप आके लो, हम तो आप नौकर हैं आपको, तो सार्थ बन जाओ, सार्थ बन जाऊंगा, सार्थ बन गई था, अब वहां से चले कैसा जा करूंगा रे, क्यों करूंगा, तो पड़वा में पैसन तेरे करवा पर केली केती करे, धारावा दर्शन तो स्वामी लिया, तू तो देखा शब्द आश्वास लगे रे, डर पड़ा है समुद्र की तरह कौरवों की सेना का, उसके सामने मैं तो नहीं जा सकता, उत्तर कुंवर बोला देख मेरा तुम्हारी वृत्ति बढ़ा देंगे, तुम अगर महीना बढ़ा देंगे तुम कहो तो जो है खाओ रथ भी चलाओ, व्रत लगे पैसा नहीं होता, रथ जाएगा ही नहीं, तीर नहीं ली जाएगी, तो कूद भागा मैं नहीं जाऊंगा इनके सामने, पतंग आग में जावा जो इनके सामने में जाऊंगी, जो उनके पास आ रही है दुर्योधन दुशासन कर्ण ऐसे सब सब महर्षि के सामने, तो कूद भागा तो अर्जुन भागा वास, तो अर्जुन भागा क्या, अर्जुन के भागने की शक्ति जो यूं भागे जो इतनी से भागता थी भर गई दिन चलाकर बरोबर भागता था, बाण चलाओ इससे ऐसे चलाओ इससे भी ऐसे चलाओ, आगे पीछे चलाओ बाण चलाओ तो धरा धन वैसे के वैसे जर सामने निशाना पा रहे जैसे, तो पीछे भागा यूं कि वो पर पीठ देख ले शत्रु को पीठ में काट लेना हार जाता है ना, जैसे चौस्ती करे तो चिता कर दे तो हार गया, ऐसे शत्रु के साथ पीठ कर दे तो हार गए, यूं तक तो पकड़ा उसका कलेजा थर भर थर कर रहे तो डर मत गए, तुम सारथी बन गया मैं रथी बढ़ू, अरे इंदिरा तू क्या कर देख तो सही मैं रंग नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं अर्जुन, इस बात तुम डर मत, सारथी बैठ चला तुम युद्ध करूंगा मैं, कर कोई बात नहीं है, तो मैं कैसे मानूंगा तुम अर्जुन हो, तो कैसे मानू बताओ कि अर्जुन के दस नाम बताओ, अर्जुन के दस नाम है किस कारण से कौन सा नाम है, दस नाम बताया कृष्ण है विष्णु है फाल्गुन है कृष्ण फाल्गुन है, हमारा नाम है अर्जुन है, पर सभ्य साथी है पार्थ है धनंद है, ये मेरे नाम दस नाम बताए, तो विश्वास हुआ बैठी अर्जुन है, फिर मैं चलो वो जो वृक्ष है उसी में से चलो, कृष्ण देव जी का ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ कर वहां से वो जाओगे जीत कर भाई साहब पढ़े रहे भाई ये कोई बोम थोड़ी जो गलती माँ करे जो करे वृक्ष पर चढ़ी और वृक्ष पर से एक पुत्र हो गया वो लाने से ना लाने से गए देख देख मैं तो अर्जुन हूं ये मेरा गांधी धनुष है ये भीमसेन की कथा है, ये महाराज भीमसेन का भाला है, ये नकुल सहदेव की तलवारें है, ये हमारे अस्त्र शस्त्र है, और वो कंक भट्ट है, वो ब्राह्मण बना वो भीमसेन महाराज है, और मैं हूँ, और जो भी हमारे फेरन भी है, जो तुम्हारे रान तुम्हारी माँ है ना, माँ के माथा गूंजती है, श्रृंगार कर देती है, तंदा लगा देती है, मेहंदी लगा दे, तुमने बड़े चतुर होते हो, ठीक कर फेरन भी बनी हुई, वो जो भी है, अब मतलब रसोई आया ना, ये भीमसेन है, घोड़ों के पीछे नकुल है, ये गायों के पीछे सहदेव है, परिचय दिया ऐसा तरह से हमारे उन्हें गांधी धनुष लिया और सब सबरथ में रखो, सब धनुष आप ले लिया, मान आप ले लिया, वो तर्कस भी ले लिया, बड़ों का बात आ गया, अब तुम चलो, अब चले महाराज, जो अर्जुन के रथ ही होते ही घोड़े सफेद हो गए, ऊपर हनुमान जी का चिन्ह हो गया, वरदान दिया हुआ था, महाराष्ट्र भी बात तुम चित्र है कोई पूरे समय में हो गया, अर्जुन का रथ चला जोर से, तो वे सामने वाले करे तो अर्जुन के रथ की है आवाज है, तो इधर तो कोई और का नहीं है, अब वो पहले ब्रह्मला बैठी थी भीतर, उनकी स्त्री का वेश था, इंद्र था स्त्री का वेश, खुले के फेर बैठे, यहां लोग बोले कि विराट हार गया, तो वो क्या करता है कि अपनी उत्तरा बेटी को लाकर दे रहे हैं, दुर्योधन आपको कन्या देते हैं, आप हमारे संधि कर लो तो ब्याह होगा उसका, भीष्म द्रोण ऐसा ब्याह हुआ, चमड़ी मंडली को भाग तो वो जगह भी नहीं, ऐसा ब्याह होगा यार, ये सोंगना वेश धरा किरीटी, ये अंगना वेश धरा लुगाई बना हुआ, ये किरीटी है, जीतवा भाई हमने इस बिता देगा हुआ, जिस दुर्योधन को जीत गाय ले जाकर दुर्योधन की रक्षा करो, दुर्योधन बचना मुश्किल है, वो पास बजाय शंख जोर से, शंख बजाते ही भीष्म द्रोण दुर्योधन सब क्या है, अरे ये तो अर्जुन है, ये शंख तो अर्जुन के शंख की आवाज है, तो वर्ष इनको प्रकट कर दिया, अब 14 वर्ष तो पूरा हो जाएगी, हमने प्रकट एक वर्ष अज्ञातवास पूरा नहीं, हमने प्रकट किया योग करेंगे, द्रोणाचार्य आदि बोले ये बातें पीछे करो, युद्ध तो करो, सामने बाहर चल गए, अर्जुन ने जोर बना द्रोणाचार्य के माने, द्रोणाचार्य साहब ने भीष्म जी बना कृपाचार्य, तो द्रोणाचार्य के चरणों में लार दो बाण पड़े, एक रूम चरणों में आर पड़े, दो बाण छोड़े जो सर 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 करते कानर पास निकल गए, इन्होंने एक बाण छोड़ा उसके ऊपर, नमस्कार किया कि दादाजी गुरु जी महाराज नमस्कार करता हूँ, मैं युद्ध करूँ तो पहले बड़ों को नमस्कार कर लेना चाहिए, अब बड़ों का नमस्कार है, उन्होंने बाण ही छोड़ दिया ऊपर, क्या ठीक बेटा मेरा हाथ अकेले छोड़ा, कर्ण भाग्यवान से शेख, ये भी बहुत शेखी बगार भगत पर कर्ण भाग्य जाता था, और कर्ण वीर बड़ा पौका था, अर्जुन को कम नहीं था, बहुत वीर वीर, और वो रस देखा तो भीम द्वारा छोड़कर दुर्योधन का देवधर है, तो बहने ला ओ भाई त्रिकोण चलो, वो दुर्योधन की तरफ रस रहा, भीष्म द्रोण ले रहे दुर्योधन को मार देगा, अर्जुन ने देखा अब क्या करूं, ये दुष्ट का काम है सभी, परंतु मेरे भाई साहब ने विचार कर रखा है भीष्म ने कि दुर्योधन को मैं ही मारूंगा, तो उनकी पत्नी का सचिव ने नहीं मारा, फिर आने फिर ये द्रोण आदि का जोर से उस युद्ध के बीच में खटा गए, ऐसे जोर से युद्ध करी भीष्म जी मेरा बांध रहे, भीष्म जानते थे उसमें छक्के छोड़ा आदमी मारा, एक अर्जुन ने सबको चुप कर दिया, और फिर सम्मोहनाश चलाया, तो उत्तरा कुंवरी थी ना उत्तर की छोटी बहन, वही बैठी थी रणवास में, मेरा सारथी मारा गया तो सारथी में सैनिक सारथी होता ब्रह्म सार्थ कर गया क्या करेगा तो वो कहती है कि मैं गुड़िया खेलती हूँ जो राजा लोग आने राजाओं के मस्तक में बड़ी रहती पाग पाग में रहता कुलावा लगा हुआ सोने का चिल्ला वे लाओ जो मेरी गुड़िया खेलूंगी मेरे गुड़िया लगाऊंगी महाराज अर्जुन ने सम्मोहनास्त्र छोड़ा सबको बेहोश कर दिया तब तू अगर जा तेरी बहन के लिए कपड़ा दिया वो लाल कपड़ा वो सफेद वो उसका है वो दुर्योधन का है वो उसका है भीष्म पितामह के पास मत जाना वे तुम्हारे पे कृपा कर चुपड़े जाओ तो खत्म हो जाओगे उनके पास मत जाना मैं अब मुर्दा है छू ले वो कपड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा ले ला गया ऐसा वो गौ को लेकर के चल ली फिर नींद खुली कौन सा अर्जुन था इसको 12 वर्ष फिर बनवास होना चाहिए दुर्योधन तो वही दोनों जो थी पहले उन्हें पैर प्रकट कर दिए अब 12 वर्ष बनवास वहां गए और समाचार पहुंचा कि उत्तर कुंवर कौरवों पर विजय करके गया ले आए तो महाराज विराट खुश खुश बहुत हो कि आज कौरवों पर अकेले मेरे पुत्र ने विजय कर ली जय हो कंक भट से खेल रहे थे उसी समाज बेसन था खेल रहे कह जाओ त्रिकुवर की राजा बोले तो बृहद वो कंक भट बोले कि जिसका सारथी बृहद ला हो उसकी जय में क्या संदेह है तो विराट सुन का बुरा तू हिंद्री की प्रशंसा करता है जय हो महाराज उत्तर को उत्तर में वहां सब विजय कर दिए कहते जिसका सारथी प्रेम मिला उसकी विजय में क्या संदेह दो तीन बार का गुस्सा आ गया तो पासे की देनी आते खून आ गया जो भी पास में तट जा खून पकड़ा कहते ऐसा क्या युधिष्ठिर है जो खून है युधिष्ठिर का खून जमीन पर गिर गया 12 वर्ष बरसा न हुए तो खून पर गिर जाएगा जमीन पर वो पात्र में ले रही है कंक भट संवार रहे हैं और राखी पहुंच रहे हैं कहते वो उत्तर कमरा आ गया है तो कंक भट ने कहा देखो वो ब्रह्मदल आवे उनको कर रहा उधर चल जाओ यहाँ नहीं आवे इधर नहीं आवे आप उधर चल जाओ अर्जुन की प्रतिज्ञा की खून निकाल ले कोई विषय का खत्म कर दो उसको उधर ज्यादा जब नहीं आएगा कंक भटने का कि जा नहीं आवा तो अर्जुन उधर चले गए और कह दिया उत्तर कुंवर को कि अब विजय मैंने की है ये रथी अब तुम ही हो कि मैं कैसे कह दू आपने किया मैं कहता हूँ तुम्ही तो रहती हो मैं तो सारथी हूँ तुम रहती हो विजय हुई है तो जाकर कर दी विजय उत्तर लगा मार गई बात किस कह गया अबे नहीं कहते ये देखो कैसा मूर्ख कंक भट्ट ये कहता है वृंदर जिसका सारथी उसकी विजय तो ठीक कहता है बात सच्ची है पर अकेले अर्जुन ने कौरव सेना पर विजय कर ली फिर बातें हुई घर पर हुआ तो कहा भीष्म जी ने कहा कि मैं भी था द्रोणाचार्य थे सब तुम थे अकेले अर्जुन ने विजय कर ली उसके सामने युद्ध कैसे करोगे अकेले की दशा है तो सब पांचों भाई आ जाएंगे तब क्या दशा माना नहीं नहीं मानेंगे तो इस दशा आगे बजे शरीर सजाओ सड़कों सजाओ और दीप मालिका करो फूलों से शहर सजाओ और सब उत्सव मनाओ बाजे बजाओ कि हमारी विजय होगी आज बजाओ आया देखा कि ये क्या किया क्या किया ये भट्ट है जो कहता है वो बिंदुरा जिसका सार थी उसकी विजय में क्या है मैं कहता हूँ उत्तर को उनकी जय हो मैं तो ये बताता हूँ ये कहता है ये बात ठीक है आप अभी चुप रहो फिर बताऊंगा आपको बात कल आदमी में, ये सौर मास होता है और एक वो चांद्र मास होता है, तो महीनों की गिनती में ज्यादा कम हो गया। तो पांडव तो आगे से आगे ज्यादा वो कहते थे आठ दिन का एक आठ का दिन है, कल बात सब बता देंगे। त्रिकोण को कहा तुम आज आज चुप रहना, कल शुरू हो जाएगा। अब बड़े चुप रहे। अब कल का दिन उदय हुआ और महाराज युधिष्ठिर राजा की प्रसाद बैठ गए, सिंहासन पर बैठ गए। वो बोला उत्तरवाई विराट, देखो देखो ये पंडित ब्राह्मण देखो इतना दुस्साहस जो सिंहासन पर बैठ गया। उत्तर मिला क्षमा करो, पुत्र पर बोलो मत। भीम से भी गला लेकर वो तैयार हो गया, अर्जुन भी वैसे तैयार हो गया। 12 महीने का था वो अज्ञात वर्ष, 12 महीने बीत गया, सब तैयार हो गए। महाराज ये है तो बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्म आई कि मैंने न जाने क्या किया, इन्हें से काम लिया है। ये युधिष्ठिर का था ना खांडव, युधिष्ठिर राज्य, उस राज्य के नीचे राज्य था विराट का, तो ये तो हमारे मालिक है। आप बैठो नहीं, सब आ गए सामने। उसने कहा मेरी बड़ी भूल होगी, आपको कितना मैंने निरादर किया है, कितना तिरस्कार किया है, कितना आपसे काम लिया है। युधिष्ठिर महाराज कहते आपकी कृपा से हमारे 12 महीना बीत गया शांति से, तो हम तो आपके आभारी हैं। यहाँ हमने दिन बिताए, छोरी पांचों भाई दोगली अपने यहाँ बताया विचार करके, अब क्या करूं मेरा कैसे है। उतरे ये ऋण हो गया आपका, आप हमारे सेवा में रहे, तो मैं मेरी उत्तरा अर्जुन को देऊंगी, मेरी कन्या है तो ब्याह दे दू, हमारा प्रायश्चित कर दू, कन्या दान कर दू। अर्जुन को अर्जुन ने कहा अरे उत्तरा तो मेरी शिष्या बड़ी है, मैंने गाना बजाना नाचना सिखाया है, तो मेरी भी कन्या की तरह है, मैं ब्याह नहीं करूंगा। तो क्या करें, तो कहा कि तुम्हारा ऐसा ही विचार हो, मेरा बेटा है अभिमन्यु, उसको ब्याह देना, अभी मेरी लड़की की तरह है, पुत्र ब्याह मेरी कन्या की तरह रहेगी, ब्याह अंत में वो होगा। ऐसा करके ब्याह रहता गया, ब्याह में सब लोग आए, राजाओं को बुलाए, तो करो लोग गए नहीं, विष्णु जी ने और क्या, तो मत जाओ विराट में, मत जाओ। कृष्ण भगवान आ गए, बलराम जी आ गए, द्रुपद राजा आ गए, सब आ गए। तो हम द्रुपद सबसे बूढ़े राजा थे, द्रौपदी के पिता, तो उन्होंने कहा ठीक है सभा हुई, अब क्या करना चाहिए, 13 वर्ष हो गए है। तो बलराम जी बोले कि 13 वर्ष हो गए, अब जाकर के मांगना चाहिए कि हमारा घर आज दे दो, हमारे से करना चाहिए सभ्यता से करना चाहिए। इतने में सात्विकी भड़का मरा जोर से कि आप इनको ही दबाते हो, अब जाकर जरा तो मांगे, ये उपस्थितियों को हित नहीं है मांगे, उनको देना चाहिए आकर के, उनके सामने साथ में आना चाहिए। अगर वो कहे तुम्हारा राज्य ऐसा मांग रहा हो गए, नहीं हो सकता, बड़े जोर से फिर सलाह हुई। ब्राह्मण को पूछा कहीं दोस्त लाया, ब्राह्मण कह दिया गाँव सन्धि करने वाले नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने कहा आपकी सम्मति से मैं जाऊं सन्धि का प्रस्ताव, शांति दूत बन जाऊं मैं, शांति दूत, शांति कर देने की वजह से युद्ध नहीं हो, शांति रहे अच्छी बात है। तो क्या आपकी संदेह ही नहीं है, आप जाओ, आप जाओगे नहीं जाओ सलाह क्या है, सबकी तरफ से आप बना रहे। उस समय में पूछा युधिष्ठिर से, पूछा संधि हो जाती, अर्जुन से पूछा, भीमसेन से पूछा, संधि हो जाता अच्छी बात है। तो संधि तू संधि कहता है, नहीं मेरी संधि नहीं है, अब आओ मेरे सामने, मैं जब तक 100 को उन्हें मार दू, गदा से दुर्योधन की जांग न तोड़ दू, जब दुशासन के खून न पी जाऊ, तब तक संधि को मैं भी संधि कर पा। द्रौपदी से पूछा, अरे द्रौपदी रो पड़ी महाराज, कि देखो मेरा केस खुला है अभी तक। पुरुषोत्सव का रुधिर जब तक न सन आया तब तक मैं पेंड नहीं बांधूंगी। जाओ भले कुरु राज धार दूत वर वेश वहां भूल जाइयो केशव द्रौपदी केस केस भूल सब निकला बोलिया बड़ी रो पड़ी और ऐसी करनी बोली है कि आपको शर्म नहीं आती है लज्जा नहीं आती है जिन्होंने मेरी ऐसी दशा करी मेरा सिर हरण किया मेरा केस खेचे मेरा तिरस्कार किया बड़ी बड़ी सभा में कुत्ता मरा हुआ घीरे देते मेरे को घसी थी आप संधि जा रहे हो आपको शर्म आनी चाहिए द्रौपदी सब होगा सब ठीक होगा आज तू रो रही है ना हजारों लोग रोएगी भी दो होगा रोएगी होगा ऐसा युद्ध होगा पर पांडुआ पर अपन नहीं रह जाएगी पांडुआ ने युद्ध किया युद्ध करके सफाई करो दीपुर ने कहते सफाई करो द्रौपदी ने कहा मेरे बूढ़े दीपुंद माला युद्ध करेंगे मेरे भाई युद्ध करेंगे मेरे पांच बेटा युद्ध करेंगे तुम मत करो युद्ध हम करेंगे सात दिन से युद्ध करो युद्ध नहीं भगवान कहना अपनी तरफ ने चढ़ाई करनी नहीं अपने तरफ से उस तरफ से युद्ध हो जाए फिर अपोर्ट करेंगे अपन युद्ध नहीं महाराज शांति चाहते ही थे फिर वहां गए वो कब मांगने वाला उसने निमंत्रण दिया सभा में कि आज हमारे यहाँ भोजन करो दुर्योधन ने तो भगवान के नहीं हम तो दुर्योधन नहीं करेंगे विदुर जी का भोजन करेंगे महाराज हमारी बहुत अच्छी भजन है सब भोजन करो आप हमारे संबंधी और पांडवों के भी संबंधी दोनों के संबंधी आप हो तो हमारे हमें भोजन करना चाहिए भगवान ने ना कह दिया ना कह चले नहीं ग्वाला मैं संस्कार करता था सम्मान करता था ये ग्वाला कोई काम का नहीं है मैं आदर करता जिमादर था आदर करके जो भोजन स्वीकार किया हमारा अरे वहां जाकर के उस शूद्र के घर पर उस दासी पुत्र के वहां भोजन करेंगे भोज वही थी वहां जाकर बुआ के पुआ पर चाहे तो ठीक है बुआ जी आया मिले फिर वहां भोजन किया तो दुर्योधन बिगड़ गया फिर बात पसंद करी पर सब सब दिखाया कहीं करेगा दुर्योधन ने विचार किया कि ये पांडव सब कूदते हैं सब ही कृष्ण के बल पर कृष्ण आज कैद कर दो बस आ गया है पख में कब्जे में आ गया है जो कैद में डाल दो सांप बांध कर कैद करूंगा हम तुम्हारे को ऐसा है वो हम आया चंदा तो सलाह करी दुर्योधन दुशासन शकुन चारों ने सलाह करी सातवी ने आकर के आप दूसरे व्याख्यान या आपके कल खाना तैयार हो रहा काल कोट के उन्हें फंस आए तो देंगे आपको भगवान बिगड़ेगा मेरे को कैद करने वाला कौन है वो मेरा क्या लेकिन हमारा तो मंत्र फूट गया जाग देख लो ऐसा दूसरे से आस में थी और तेज नहीं सहसा देखने से आंखें खोल नहीं सकता अग्रोण भीष्म बना स्तुति प्रार्थना करे वाह प्रभु आपका अनंत ऐश्वर्य है आप साक्षात परमात्मा है ऐसे मूर्छित हो गई तेज भगवान ऐसे चल रही है तो ऐसी बात हुई महाराज तो महाराज कृष्ण थे पक्ष में और उन्होंने कह दिया कृष्ण भगवान ने तुम समझो कि मेरे बुआ के बेटा है इस वास्ते मैं पक्ष में हूँ नहीं हूँ मैं धर्म के पक्ष में धर्म करे उसके पक्ष में हूँ मैं बुआ का तो संबंध नहीं मानता हूँ मैं तो संबंध मानता हूँ धर्म का नीति का अपनी मर्यादा का तो भाइयों बहनों मर्यादा अपनी पालन करो धर्म का पालन करो भगवान भगवान को याद रखो ये लोक वृद्ध उन्होंने भी सुधर जाए इसकी सुधरने से नारायण 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 सुना दे भाई थोड़ा कीर्तन सुना दे।